मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत हो गई है। अगर आप मेरा लाइफ मैनेजमेंट भी सुनते होंगे तो नएपन के बारे में मैं फिलहाल बातें भी कर रहा हूं और पिछले कुछ एपिसोड से हम लोगों का यही चल रहा है। लेकिन फिलहाल आपके लिए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि अब मई के अंतिम तिथि को बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बिल्कुल भी दिन नहीं बचे हैं। सच पूछिए, एक एक दिन करके वह डेट भी आ जाएगी जब आप प्री एग्जामिनेशन देने के लिए अपने सेंटर के एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश कर रहे होंगे, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों प्लीज, आपने जो भी संकल्प लिया हो, प्रतिज्ञा की हो, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एक थॉट तो आप अपने दिमाग में लाइए, बहुत ही सिंपल सा थॉट, और वो ये कि नहीं, अब अपने हर पल का मैं बहुत ही सार्थक उपयोग करूंगा, अपने पूरे के पूरे दिन को मैं इस तरीके से बनाऊंगा, उसको इस तरीके से स्वरूप दूंगा कि जिसके टॉप पर मेरी प्रिपरेशन रहेगी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन। याद रखिए, मैं प्री के प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं, यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन की बात कर रहा हूं। यह विचार तो आपके दिमाग में होना चाहिए और फिर बना भी रहना चाहिए। तो दोस्तों आज के मुख्य विषय के तहत मैं आप सबसे एक अलग ही मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। हालांकि फिलहाल जो हम लोग पावर ऑफ एलिमिनेशन पर बात कर रहे थे, मुझे उसे ही कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए अपने टेबल पर आया तो अचानक मेरे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं, आज थोड़ा सा बदला जाए। एक पॉइंट तो हम लोग पूरा कर चुके हैं कि पढ़ने के कैसे हमारे तौर तरीके हों जो हमारी मदद करेंगे पावर ऑफ एलिमिनेशन की क्षमता विकसित करने में। फिर मुझे लगा कि ठीक है, एक पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, चार एक पॉइंट और बचे हैं, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस पर बात की जानी चाहिए क्योंकि इसका संबंध भी कहीं ना कहीं पावर ऑफ एलिमिनेशन से तो है, भले ही डायरेक्ट न हो। तो आज मैं आपसे इस विषय पर बात करने जा रहा हूं कि जब कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी समाचार आता है जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस से मैच करता हो, तो आप उसकी तैयारी करेंगे कैसे। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप में उत्सुकता बढ़ी होगी और आप जानना चाहेंगे कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा टॉपिक है और हमें इसके बारे में जानना ही चाहिए। दोस्तों दो तीन समाचार हैं, पहले मैं वे आपके सामने रखूंगा, फिर इन्हीं को आधार बना करके हम लोग बातें करेंगे। इस बीच में जो घटनाएं घटी हैं उन पर आपकी नजर बकायदे होगी ही। देखिए, अगर मैं डेली ऑडियो लेक्चर नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया बंद हो गई है, घटनाएं घटती रहती हैं। ये बात अलग है कि सैटरडे संडे को जो घटनाएं घटित होती हैं उनकी संख्या नहीं के बराबर होती है, लेकिन फिर भी कुछ जो घटनाएं रही हैं वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। एक आपने पढ़ा होगा कि जो म्यांमार की जो लीडर हैं आंग सान सू, ये डेमोक्रेटिक लीडर हैं, इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया है, भारत से इनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, भारत में इन्होंने एजुकेशन हासिल की थी। म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश ही है म्यांमार, जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन में बर्मा के नाम से पढ़ते हैं। दोस्तों यहां लोकतंत्र और सैन्य तंत्र में लगातार आप यूं कह लीजिए कि क्लैशेज होते रहते हैं। बहुत लंबे समय तक बर्मा सैन्य तंत्र के अंतर्गत रहा, इन्होंने आंदोलन किया आंग सान सू ने, वहां डेमोक्रेटिक सरकार आई, लेकिन सैन्य तंत्र से पार पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक बार फिर से इन्हें पदस्थ कर दिया गया, इन पर आरोप लगाए गए और अब इन्हें सजा दे दी गई है, जेल की सजा दे दी गई है, और अगर उन टोटल को मिला दिया जाए तो 30 साल से ज्यादा जेल की सजा इन्हें भुगतनी पड़ेगी। ये एक छोटी सी खबर है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है कि ये म्यांमार की घटना है। मैंने क्या कहा कि म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और आप जानते हैं कि खासकर जो नेशनल हमारी सिक्योरिटी है, खासकर तस्करी वगैरह के मामले को लेकर के म्यांमार की सीमा से बहुत लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट में एंटर करते हैं, और अगर वहां सैन्य तंत्र है तो भारत के लिए चिंता की बात होती, क्योंकि देखिए हम डेमोक्रेटिक राष्ट्र हैं और जो भी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज होंगी डेफिनेटली उनके साथ हमारा तालमेल ज्यादा बैठेगा क्योंकि हम सेम वेव लेंथ पर बात कर रहे होंगे। इसलिए यह खबर आपके लिए थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। आप देख रहे हैं ना कि एक छोटी सी घटना थी, आंग सान सू को जेल की सजा अखबार में ये, लेकिन मैंने इसे अपने सिलेबस को ध्यान में रख करके उसके आसपास की बातें भी आपके सामने रखी हैं ताकि यदि कोई मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है तो आप इस कंटेंट का इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही साथ जब मैंने इतनी सारी बातें आपके सामने रखी हैं तो अब इस घटना को भूल पाना आपके लिए इतना आसान नहीं होगा, और जब आप इसे नहीं भूलेंगे तभी इसका इस्तेमाल आप एग्जामिनेशन में कर सकेंगे, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। दोस्तों, जो दूसरी घटना है वो ब्राजील में चुनाव को लेकर के है। ब्राजील में अक्टूबर में चुनाव हुए थे, और उस चुनाव में जो सिल्वा जी हैं, उनका पूरा नाम है लुइस इनासियो लूला द सिल्वा, लूला के नाम से ये ज्यादा जाने जाते हैं। इनका निर्वाचन हुआ, ये राष्ट्रपति बने, लेकिन वहां के जो पहले लीडर थे, जो दक्षिणपंथी नेता है, राइटिस्ट है, वो जैर बोलसोनारो, उनको पराजित किया था, लेकिन वो सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंततः उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी लूला के फेवर में, और जो बोलसोनारो हैं, अब कहा जा रहा है, अखबारों में जो आज खबर छपी है, कि वो अपना देश छोड़ करके अमेरिका चले गए हैं। लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ठीक है, मैं चुनाव हार गया हूं, लेकिन युद्ध खत्म नहीं हुआ है, मैं जल्दी लौटूंगा। ये एक घटना है, ये ब्राजील की घटना है। सामान्य तौर पर दिमाग में ये बात आती है कि ठीक है, ब्राजील की घटना है, हमको क्या लेना देना। नहीं, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें देखना होता है कि ये घटना किस देश की है और हमारे लिए वो कितना महत्वपूर्ण है। मैंने अभी आपके सामने म्यांमार की बात रखी, तो म्यांमार हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है। ब्राजील बहुत दूर है। आपको चाहिए कि आप बाकायदे विश्व का नक्शा निकालें और आप देखिए कि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अगर हम भारत की तरफ से चलेंगे तो बिल्कुल उसके ईस्ट पर ही आपको ब्राजील मिल जाएगा। जब आप नक्शे को बहुत ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने भी देश हैं, एरिया वाइज नक्शे से पता तो लग ही जाता है अंदाजा, कि ब्राजील का एरिया सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। और अगर ब्राजील का एरिया सबसे बड़ा है तो शायद पॉपुलेशन भी वहां जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जितने देश हैं वो सबसे ज्यादा होगी सामान्य तौर पर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्राजील जो है दक्षिण अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री है, पॉपुलेशन भी वहाँ लगभग 22-23 करोड़ के आसपास है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी पॉपुलेशन नहीं है। भारत के लिए ब्राजील बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जब आप आर्टिकल्स पढ़ते होंगे तो आप देखते होंगे कि कैसे ब्राजील का नाम आता है। क्या आपको ध्यान है कि जब सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की बात आती है, जिनको वीटो पावर मिलता है, स्थायी सदस्य, तो उसमें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन दावेदार होता है? ब्राजील, आपको याद होगा। जैसे अफ्रीका से कौन दावेदार होता है बताइए? दक्षिण अफ्रीका जो देश है, महाद्वीप की बात मैं नहीं कह रहा, देश है, तो वहां से दक्षिण अफ्रीका सबसे बड़ा अगर दावेदार है तो इसका मतलब है कि उस महाद्वीप में वो बहुत पावरफुल है, वो उस महाद्वीप का नेतृत्व करेगा। और अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील दावा कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पूरे के पूरे महाद्वीप का जो महत्वपूर्ण राष्ट्र है वो ब्राजील है, और भारत भी ब्राजील को बहुत तरजीह देता है। अगर हमें लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपना संबंध विकसित करना है, गहरे बनाने हैं, तो डेफिनेटली वो ब्राजील के थ्रू ही संभव हो सकेगा, क्योंकि ब्राजील वहां का एक बहुत ही पावरफुल कंट्री है। एक बहुत अच्छी बात अभी जो हुई है, जिसकी वजह से यह घटना और महत्वपूर्ण हो जाती है, वो ये है कि वहां जो अब राष्ट्रपति बने हैं लूला, वो भारत के बहुत निकटतम मित्र हैं। मतलब आप यूं कह लीजिए कि भारत उन पर भरोसा कर सकता है, भारत के वो विश्वसनीय मित्र हैं। आप सोचिए कि 2004 में जब हमारे यहाँ रिपब्लिक डे हुआ था तो उसमें वो मुख्य अतिथि बनकर आए थे, ये सब तो काम करते हैं, बातें काम आती हैं। 2012 में बकायदे उन्हें इंदिरा गांधी शांति सम्मान दिया गया। और आपको ये भी मालूम है कि ब्राजील जो है ब्रिक्स का मेंबर है, बी ब्राजील, G20 का भी सदस्य है, इसका मतलब है कि ब्राजील एक महत्वपूर्ण देश है, तो भारत इसकी उपेक्षा कैसे कर सकता? उपेक्षा की बात छोड़िए, भारत को इसे तरजीह देनी चाहिए। और जो लूला भी हैं वो भारत को एक तरह से अपना आइडियल मानते हैं। तो अब आप देखिए कि घटना सिर्फ एक है, मैं एक साथ लेकर के मुख्य विषय पर भी बात कर रहा हूं। घटना एक है कि वहां लूला राष्ट्रपति बने और जो पहले राष्ट्रपति थे बोलसोनारो, वो छोड़कर अमेरिका भाग गए। छोटी सी घटना है, आप याद कर लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इस घटना की जब आप तैयारी करेंगे, इस घटना को माध्यम बना करके, तो कैसे आसपास की और चीजों को आपको समेट कर चलना चाहिए। दोस्तों, इस बीच में आपने एक खबर पहले पढ़ी होगी, वो ये है कि भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया, और वो है कि जो हमारे लघु बचत होते हैं, जो छोटे छोटे हम सब बचत करते हैं, हाउस होल्ड, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, तो उनके बचत पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। लघु बचत पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है, यह इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। ठीक है, क्या आपको नहीं लगता कि इसके आधार पर हमें थोड़े से इस टॉपिक को और अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए? लघु बचत को लेकर के नहीं, लघु बचत को तो लेकर के आपका इंडिपेंडेंट टॉपिक है ही, उस पर तो आपकी तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत जैसे देश के लिए लघु बचत बहुत ज्यादा मायने रखती है, बहुत ज्यादा मायने रखती है। और खासकर जो जनधन योजना है वो क्या है, वो लघु बचत से ही जुड़ी हुई योजना है। कि हमारे गांव के जो छोटे छोटे लोग हैं जिनकी बहुत कम आमदनी है, वो भी कम से कम अपनी बचत को बैंक में सुरक्षित रख सकें। क्योंकि अंततः देखिए, बचत हम व्यक्तिगत रूप से करते हैं लेकिन वो राष्ट्र के काम आता है, बशर्ते कि हम उसे बैंक में डाल दें, है ना, फिर तो उसका निवेश होता है ना। तो लघु बचत भारत के लिए बहुत जरूरी है, और अगर आपने उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा दिया तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोग बचत करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। अगर ब्याज दरें बहुत कम होंगी तो सीधी सी बात है कि लोग कहेंगे कि बचत करके क्या करना है, उससे ज्यादा तो मुद्रा स्फीति की दर ही है, तो उसकी जो वास्तविक कीमत है मुद्रा की जो है वो तो घट ही जाएगी, तो क्या बचत करना। तो खासकर लोग लघु बचत की ओर प्रेरित हो सके उस दृष्टि से इस पर ब्याज दर बढ़ाया जाना कितना उपयोगी है। क्या आपको नहीं लगता कि केवल इस सिद्धांत को केंद्र में रख करके आप इन्फ्लेशन पर थोड़ी बहुत बात कर सकें, लघु बचत को नए तरीके से समझ सकें, भारत के लिए क्यों जरूरी है इस पर आप कुछ सोच सकें, विचार कर सकें, छोटी मोटी टिप्पणी लिख सकें 50-100 शब्दों की? दोस्तों, मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरी ये बातें थोड़ी सी आप लोगों को कठिन लगती होंगी क्योंकि कुछ करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों क्या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी ही अपने आप में कठिन प्रक्रिया नहीं है? तो देखिए, मुझे तो वही बात बतानी चाहिए जो मुझे सही लगती है और जो आप लोगों के हित में है। अब मैं केवल ये सोच करके नहीं, ये थोड़ी सी कठिन है और आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊं या नहीं बताऊं, मेरे दिमाग में वो थॉट नहीं आते। हाँ, किसी चीज को जो की ही जानी चाहिए, कैसे सरल तरीके से आप कर सकते हैं, ये मैं बताने की जरूर कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: महेंद्र चावड़ा जोधपुर राजस्थान से, रोशनी वैशाली बिहार से, अमित सिंह कोची से, भूपेंद्र पाटीदार और साई औरंगाबाद महाराष्ट्र से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।